हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीर वन चारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी यमुना तीर वन चारी कुंज बिहारी यमुना तीर वन चारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी रमणचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधे जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधे जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जन वल्लभ गिरिवरधारी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 जन वल्लभ गिरिवरधारी गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल जय गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल जय गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा गौरनिताई गौरनिताई जय जय गौरनिताई जय जय गौरनिताई जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय भगवत्पाद नितई गौर हरि हरि बोल हरि बोल नितई गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
जय जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्वी का श्री श्री गिरधारी जी की जय नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की, हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Jai Guru, Jai Gauranga, Jai Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध दशम अध्याय श्लोक संख्या सप्तम त्रयोदश त्रिंश 37। अनुजानिहि नो भूमन् तव अनुचर किंकरो दर्शनम् नो भगवत ऋषेहे आसित अनुग्रह अनुजानिहि नो भूमान् अनुजानिहि नो भूमान् तव अनुचर किंकरो तव अनुचर किंकरो दर्शनम् नो भगवत दर्शनम् नो भगवत ऋषे रासित अनुग्रहः ऋषे रासित अनुग्रहः अनुजानिहि नो भूमान् तव अनुचर किंकरौ दर्शनम् नो भगवत ऋषे रासित अनुग्रह अनुजानिहि नो भूमान् तव अनुचर किंकरो दर्शनम् नो भगवत ऋषे रासित अनुग्रह
Amen.
माताओं में से। अनुजानी ही आप अनुमति दें नौ हमें भूमन हे विराट रूप तव अनुचर किं करो। हम आपके विश्वस्त भक्त नारद मुनि के दास हैं। दर्शनम साक्षात देखने के लिए नौ हमारा भगवत आपका ऋषि नारद ऋषि का आसित था शाप के रूप में अनुग्रह कृपा से। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। हे परम रूप, हम सदैव आपके दासों के विशेषतया नारद मुनि के दास हैं। अब आप हमें अपने घर जाने की अनुमति दें। यह तो नारद मुनि की कृपा थी कि हम आपका साक्षात दर्शन कर सके। भक्त का आशीर्वाद पाए बिना मनुष्य को अनुभूति नहीं हो पाती कि कृष्ण भगवान हैं। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। भगवत गीता के इस श्लोक के अनुसार ऐसे अनेक सिद्धि या योगी हैं जो कृष्ण को नहीं समझ पाते, उल्टे वे उनका गलत अर्थ लगाते हैं। किंतु यदि नारद की परंपरा से चले आ रहे हैं स्वयंभूर नारद शंभु भक्त की शरण ग्रहण की जाए तो यह समझ में आ सकता है कि कौन व्यक्ति भगवान का अवतार है। इस युग में अनेक छन्म अवतार इसलिए विज्ञापित किए जाते हैं कि वे कुछ जादूगरी दिखला चुके हैं, किंतु नारद के दासों तथा कृष्ण के अन्य दासों के अतिरिक्त अन्य कोई भी यह नहीं समझ सकता कि कौन ईश्वर है और कौन नहीं है। इसकी पुष्टि नरोत्तम दास ठाकुर ने की है। छड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बा। जब तक किसी वैष्णव की कृपा नहीं होती तब तक जीवन के भौतिक बोध से कोई छुटकारा नहीं पाता। अन्य लोग न तो कल्पना से ही न ही शारीरिक या मानसिक आसनों से कभी समझ सकेंगे। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इतना सुंदर श्लोक है ये भागवतम का और इतना सुंदर विषय है। यदि इसको कोई समझ ले तो ये उसके जीवन में असंभव नहीं है कि वो भगवत दर्शन कर सकें। निश्चित रूप से यदि कोई इस श्लोक को समझ लें या इसके भाव को, इसके सार को समझ लें, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति इसी जन्म में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर सकता है अपने इसी भौतिक देह और इसी भौतिक चर्म चक्षु के द्वारा। ये बहुत ही वैज्ञानिक पूर्ण बात है। हम सब भागवतम से या अन्य कथाओं से या अन्य पुराणों से देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन करने में यशस्वी होता है, सफल होता है, तो हम देखते हैं कि उस दर्शन से पूर्व वो किसी न किसी भक्त के द्वारा, भगवान के विशुद्ध भक्त के द्वारा प्रेरित किया हुआ होता है। जैसे 10 प्रचेताओं की बात करें तो शिवजी ने उनको उपदेश किया था, ध्रुव महाराज की बात करें तो उनको नारद मुनि ने उपदेश किया था। यहां पर ये जो नल कुबेर और मणिग्रीव जिन्होंने भगवान के दर्शन किए उनको भी नारद जी ने प्रेरित किया। तो यहां पर इस श्लोक का मुख्य विषय है कि भगवान के भक्त की कृपा हो तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन संभव है, अन्यथा नहीं। ये मुख्य विषय है इस श्लोक का। यहां पर मणिग्रीव और नल कुबेर श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं दामोदर से, और दामोदर लीला हम सब जानते हैं, हम सब ने कई बार सुनी है। तो ये श्री कृष्ण जो है दामोदर रूप में है, तो अधिकांश कितने वर्ष के होंगे, दामोदर जब लीला हुई संपन्न हुई तब कृष्ण कितने वर्ष के रहे होंगे, कब संपन्न हुई दामोदर लीला, किस दिन? है? एक साल के ऊपर थोड़ा सा दिन, 2-2.5 वर्ष के होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मां यशोदा का स्तनपान 6 वर्ष की आयु तक भी करते थे, 6-7 वर्ष की आयु तक। आज भी गांव में 2-2.5 साल 3 साल के बच्चे स्तनपान करें आम बात है, मैंने देखा है 2-2.5 वर्ष के बच्चे तो करते हैं मां का स्तनपान, शहरों में 6 महीने या 1 साल में छुड़ा देते हैं। तो श्री कृष्ण की उम्र करीब करीब 2-2.5 वर्ष की रही होगी, और वो घुटने के बल इसलिए चले क्योंकि उखल बंधा हुआ था। ये नहीं कि कृष्ण चलना नहीं सीखे थे, कृष्ण चलना सीख चुके थे। तो कौन से दिन दामोदर लीला संपन्न हुई? दीपावली के दिन। दीपावली के दिन दामोदर लीला, बहुत सारी लीलाएं हैं ना, दामोदर लीला, फिर विराट रूप बलि महाराज को, फिर रामचंद्र जी का पुनः अयोध्या आगमन, ऐसे बहुत सारी लीला है दीपावली के दिन में। तो दामोदर स्वरूप है श्री कृष्ण का, छोटे से बालक 2.5 वर्ष का। और यहां पर ये एक बहुत सुंदर शब्द है, भूमन अनुजानी ही नो भूमन। तो ये भूमन शब्द क्यों, देखिए बालक है, और भूमन शब्द की परिभाषा क्या है, उसका अनुवाद क्या है, हे विराट रूप। देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं बाल स्वरूप का। इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्ताम की मन्ये, कि काले स्निग्ध घुंघराले केश युक्त सुंदर कमल नयन वाले जो लोचन है, ऐसे श्याम सुंदर स्निग्ध वर्ण, ऐसे बाल गोपाल स्वरूप का दर्शन या बाल गोपाल का स्वरूप मेरे हृदय में सदैव विराजमान रहे, दूसरे अन्य वरदानों से मेरा क्या प्रयोजन है। इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य विरास्तम कि मन्ये, किम अन्य, अन्य वरदानों से क्या प्रयोजन है। वरम देवम मोक्षम न मोक्षम वधिम्वा न चान्यम वृणेहम वरेषाद पीहा, तो दूसरे वरदानों से। तो ये नल कुबेर और मणिग्रीव ये दर्शन कर रहे हैं बाल स्वरूप का, बाल गोपाल का, और कह रहे हैं भूमन हे विराट रूप, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया प्रभु के दर्शन करने मात्र से, उनको ज्ञान हो गया, और वो ज्ञान क्या, ज्ञान का जो स्रोत है, ज्ञान का जो स्रोत है या ज्ञान का उद्गम स्थान या ज्ञान की शुरुआत वो कहां से हुई, गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव से। इसलिए हम लोग रोज उच्चारण करते हैं ना, ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य, है गुरुदेव के चरणों में हम सदैव कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि नारद मुनि के कारण ही हमें ये आपका जो दर्शन है वो संभव हुआ। हाँ, ऋषेर आसिद अनुग्रहात दर्शनम नो भगवत। हाँ, नारद मुनि के कृपा से हमें आपके दुर्लभ दर्शन हुए। अर्जुन भी कहते हैं ना कि सर्वम एतत् ऋतम मन्ये यन माम वदसि केशव नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवान दानवा। दशम अध्याय में भगवद गीता के कि हे भगवान सर्वम एतद् ऋतम मन्ये, हे प्रभु आपने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ मैं सत्य मान रहा हूं। भगवद गीता में जो चतुश्लोकी भगवद गीता है ना, परम ब्रह्म परम धामम, उसका अंतिम श्लोक सर्वम एतद् ऋतम मन्ये यन माम वदसि केशव, हे प्रभु हे केशव आपने जो कुछ भी कहा है मैं उसे सत्य मानता हूं। नहीं ते भगवन व्यक्तिम, हे प्रभु आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम ज्योति का उद्गम स्थान है, आप ही सर्व के आश्रय हैं, आप ही विश्वम भर हैं, आप ही विश्वरूप है, आप ही अनेक अनेक अवतारों के कारण है, आप ही सर्व कारणों के कारण है, ये हर कोई नहीं जानता। नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवान दानवा, कोई बड़े से बड़ा पंडित प्रकार पंडित या कोई बड़े बड़े देवता या बड़े बड़े दानव भी आपको नहीं समझ पाते हैं प्रभु। तो मेरा क्या स्थान है, मेरी क्या औकात है, मैं कैसे जानूंगा आपको। आप कुंती महारानी की प्रार्थना देखिए, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना देखिए, ध्रुव महाराज की प्रार्थना देखिए, सभी जगह विश्वम भर विराट रूप भूमान, ऐसे अनेक अलग 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 शब्द आते हैं, क्योंकि सब लोग भगवान की जो पोजीशन है, जो भगवान का स्थान है, जो भगवान का जो भगवत तत्व है उसके विषय में जान लेते हैं। ध्रुव महाराज तो 5 वर्ष के बालक थे, कोई पाठशाला में भी नहीं गए थे, परंतु जैसे ही भगवान के दर्शन हो गए तो अवाक रह गए, ऐसे जड़वत, और नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, कंठ गदगद हो गया, शरीर रोमांचित होने लगा और कांपने लगा। नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुल कैर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसी हमारी परिस्थिति कब आएगी, जब हे केशव हे गिरधारी हे यादव ऐसे कहेंगे तो आंखों से अश्रुओं की धारा बह जाएगी। और हम लोग रोज 25,000 नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला जपते हैं, तो सोचते हैं कब खत्म हो जाए जल्दी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो नयनम गदगद अश्रुधारया कभी नहीं होता है, वदनम गदगद रुद्धया गिरा कंठ गदगदित कभी नहीं होता, पुल कैर कभी भी शरीर पुलकित रोमांचित नहीं होता, पुल कैर निचितम वपु मेरा शरीर कब, महाप्रभु प्रार्थना करते हैं कि कब होगा ये, तब नाम ग्रहणे भविष्यति, भविष्य में वो समय कब आएगा कि ऐसे मेरे अंदर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होंगे, प्रभु दया करो। तो ऐसे ये भगवान की परिस्थिति जान चुके हैं, तो ध्रुव महाराज ऐसे अवाक रह गए, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले, 5 वर्ष के बालक है, आंखों से प्रभु के दिव्य दर्शन करने से आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, कंठ गदगदित हो गया, शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया, कांपने लगा, कंपन होने लगा। तो भगवान ने जब उनके गाल पर उनके कपोल पर ऐसे शंख का स्पर्श किया, एक एक उत्तम श्लोक निकलने लगे बिना किसी पाठशाला में है, क्योंकि पहले मूल में गुरु की कृपा हुई, नारद मुनि ने उपदेश किया कि इस प्रकार से प्राणायाम करो और ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का जप करो और इस पे ध्यान केंद्रित करो और धीरे धीरे समाधि की अवस्था को प्राप्त करो। तो ज्ञान उपदेश भी किया और आशीर्वाद भी प्रदान किया है, ज्ञानोपदेश भी किया और आशीर्वाद भी प्रदान किया और भगवत प्राप्ति हो गई। पर यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो मणिग्रीव और नल कुबेर ने उद्दंडता की और नारद जी से श्राप प्राप्त किया, पर जैसे ही नारद जी से श्राप प्राप्त हुआ उनका जो नशा था उतर गया, उनका नशा उतर गया और वो अनुनय करने लगे, नारद जी के चरणों में विनती करने लगे कि श्राप का हमें निवारण बताइए, उसको विमोचन कीजिए। नारद जी ने कहा नहीं, इसका विमोचन नहीं हो सकता, पर निवारण करने का एक ही उपाय है, आप जाइए ब्रज में और नंद भवन जहां होगा भविष्य में वृंदावन में, वहां पर यमलार जो नाम के दो वृक्ष बन जाइए और आप वहां पर तपस्या कीजिए। तो वृक्ष रूप में वो वहां पर तपस्या करने लगे और सदैव कृष्ण का स्मरण करते रहे, कृष्ण स्मरण करते रहे। हम कह सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण स्मरण करते रहे और उनको कृष्ण प्राप्ति हुई हजारों वर्षों के बाद, क्योंकि ये तो बहुत साल पहले घटना घटी थी। हजारों वर्ष उन्होंने कृष्ण नाम का भजन किया और उनको दर्शन हुए। तो नारद जी के श्राप भी अनुग्रह साबित हुआ। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं ना, भगवान के शुद्ध भक्त से जो भी प्राप्त हो जाए वो कल्याणकारी होता है, परंतु वो भगवान के शुद्ध भक्त होने चाहिए कि उनसे जो भी प्राप्त हो वो परम कल्याणकारी होता है। नारद जी के श्राप से भी इनको कृष्ण दर्शन हुए, परंतु ऐसा नहीं है कि कोई वन बगड़ा में बापू बैठा है बंडी वाला और जेब से कुछ भी जो मांगे निकालते रहता है और बोले बापू के चरण में हमने पैसा दिया तो बोले हा आउड़ी आउड़ी गाड़ू हम बड़ावे, इसे गाली देता है, बोला बड़ा बड़ा मां बहन के ऊपर गाली देता है, तो बोले गाली नहीं है घी की नाली है, ये बकवास ही है। उस बापू राव से पूछो क्यों भगवान का नाम नहीं लेता है, कभी आपको ये नहीं कहेंगे भगवान का नाम लो। बोले बच्चा तेरा कल्याण होगा, क्या ऐसा पीठ में मारेगा एक थप्पा मारेगा तो सब लोग पीठ में थप्पा खाने जाते हैं, सब थाप ऐसे जोर से इसे, ये सब बकवास है। उसका गाली फाली से किसी का उद्धार नहीं होता है, वो खुद भी नरक में जाएगा दूसरे भी नरक में जाएगा, बंडी से कितना भी लड्डू निकालेगा। ऐसे बहुत वन बगड़ा में बापू बैठे हैं गुजरात में और इधर उधर सौराष्ट्र में काठियावाड़ में, सौराष्ट्र में जाएंगे तो दो चीज फेमस है, खांभियू और एक ऐसे बहुत सारे बापूड़े बैठे हैं वो किसी का उद्धार नहीं करते। और एक बापू है राष्ट्रीय संत जो आज से 20 साल पहले बहुत अच्छी राम कथा करते थे, अभी फिल्मों के गीत और शायरी और कव्वाली गाते थे, चार घंटे में मुश्किल से 20 मिनट राम कथा करते हैं, फिर चाहे वो प्लेन में गाएं चाहे स्टार क्रूजर में गाएं, ऐसे नहीं होता है। कृष्ण भक्त जो है सदैव कृष्ण कथा कृष्ण लीला के अलावा, यहां पर टीका क्यों की जा रही है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि कलयुग में ऐसे कई छंद अवतार हैं जिनके विज्ञापन किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ चमत्कार दिखा दिए, श्री प्रभुपाद जी ने कहा, इसलिए कुछ एक दो उदाहरण दिए। नहीं तो यहां कृष्ण कथा के सिवा जहां समय कम पड़ता है कृष्ण कथा का या भगवत चरित्र का, दूसरे के क्यों उंगली उठाए। पर जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है तो एक शिक्षा के रूप में एक बोध उपदेश के रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं, पठन पाठन करते हैं, श्रवण करते हैं, अन्यथा किसी की निंदा करने की क्या आवश्यकता है। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि भगवान के भक्त का अनुग्रह होना चाहिए, भगवान के भक्त के भक्त से हमें यदि श्राप भी मिले या कोई डांट भी मिले तो हमें यह सोचना चाहिए कि वो हमारे लिए कल्याणकारी है। परंतु एक बात हमें मन में दृढ़ कर लेनी चाहिए कि भगवान का भक्त हमें प्रेम करे, स्नेह करें, उपदेश करे, कथा कीर्तन करे, संग में प्रसाद लें, या कभी हम पे क्रोधित हो जाएं, या हमें कभी कटु वचन कह दें, वो सब बहुत उचित है, ठीक है। हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखा है कि कई बार कई भक्तों के कटु व्यवहार से भी हमारा तो कल्याण ही हुआ हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, परंतु एक बात मन में बिल्कुल संकल्प कर लेना चाहिए कि भगवान का भक्त से किसी प्रकार से हमारा संपर्क रहना चाहिए। यदि भगवान का भक्त यदि हमसे रूठ जाए और वो ये कह दें कि हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, हमें आपसे कोई संबंध नहीं, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, वो हमारे लिए सबसे घातक बात है। कि भगवान का भक्त यदि शुद्ध भक्त यदि हमारे से दूर हो जाए, अलग हो जाए, हमें अवॉइड करे, हमारे से दूर हो जाए, यदि ऐसी कोई घटना हो जाए, ऐसा कोई प्रसंग हो जाए या ऐसी कोई बात हो जाए, तो ये हमारे लिए सबसे घातक है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुखद बात है। या आप जीवन में अनुभव कीजिएगा, कभी मनन विचार कीजिएगा कि भगवान का भक्त यदि गाली भी देता है, यदि दुर्व्यवहार भी करता है हमारे से, तो भी ठीक है, लेकिन हमें भक्त मिले ही ना, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, मेरी कोई बहुत गलती है, अब मेरा भक्ति में पतन शुरू हुआ है, काउंट डाउन शुरू हो गया है। क्योंकि अब हमें उपदेश कौन करेगा, अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। हमारे गुरु महाराज अक्सर कहते हैं यदि कोई आपकी निंदा करे तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि वो आपके दोष दर्शन करा रहा है, तो हमें सुधरने का मौका मिल रहा है। अच्छी बात है ना, तुम्हारे में ये कमियां हैं, ये गलतियां हैं, तो अच्छी बात है। हमारे गुरुदेव इस बात पर कई बार बल देते हैं, यदि कोई आपकी निंदा करे तो आप खुश हो जाइए, उससे बड़ा मित्र नहीं है, वो यहां तक कहते हैं कि उससे बड़ा मित्र कोई नहीं है, और जो आपकी प्रशंसा करे तो आप सावधान हो जाइए कि कहीं चापलूसी करके कहीं मेरे लिए घातक तो नहीं हो जाएगा। कहते हैं ना हमारे गुरुदेव अक्सर कई बार ये बात कहते हैं, यदि भगवान का भक्त चुप हो जाए, हमसे दूर रहे, तो हम सोचते हैं ठीक है, ये नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, हम दूसरे प्रभु जी की काउंसिल ज्वाइन कर लेंगे। हाँ ये भी होता है, लेकिन सावधान, याद रहे ये सफलता की सीढ़ी नहीं है। कई बार कई भक्त लोग ऐसा देखते हैं, किस भक्त पद पर है, कौन से बड़े पद पर है, हम उनके काउंसिल में जाएंगे। किस भक्त की काउंसिल में 150-200-250 भक्त हैं, 5-10 है, तो उसकी काउंसिल में दम नहीं, उसमें नहीं जाएंगे। जिसमें ज्यादा लोग हैं उसमें हम जाएंगे, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध है, नामचीन है, तो हम भी कहला सकते हैं गर्व से हम फलाने के काउंसिलर हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। यदि हमने एक भक्त की शरण ली है, श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक उनकी शरण लें। यदि कहीं हमारा घर बदल जाता है, कहीं हम दूर रहने जाते हैं, तो हम ये भक्त की अनुमति लेकर दूसरे भक्त की संगति प्राप्त करें। मुझे याद है जब हमारा मीरा रोड में नया नया मंदिर था, तो दो ऐसे भक्त थे, एक माता जी थी और एक भक्त थे। उन्होंने जब हॉस्पिटल में जॉब ज्वाइन किया, तो उन्होंने उनके काउंसिलर का लेटर दिया और लिखित रूप में माफी मतलब क्षमा साथ अनुमति भी मांगी कि प्रभु जी आप हमें अनुमति दीजिए, हमारी कुछ ऐसी सुविधा है कि हम हॉस्पिटल के काउंसिलर डॉक्टर से काउंसिल करेंगे, तो हमारी ये सुविधा रहेगी, और हम शुरू से आपसे मिलने से पहले उनके संपर्क में थे, तो कृपया आप हमें अनुमति दीजिए कि हम उनके साथ ही आगे बढ़ें। लिखित रूप में क्षमा सा, आज वो अच्छे भक्त है, कोई उनका भक्ति में रुकावट नहीं है, बाधा नहीं है, अच्छे भक्त है। एक हमारा गुरु भाई है, साउथ इंडियन था, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में था, वो दिल्ली चले गया, कमल लोचन प्रभु उनके काउंसिलर। तो एक दिन मैं देख रहा था गुरु महाराज के पास जूह में बैठा था, तो आके कहने लगा महाराज मेरी दिल्ली में ट्रांसफर हो गई, क्या मैं दूसरे काउंसिल को अटेंड कर सकता हूं या उनसे ईमेल से ही बना रहा हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप वहां के किसी वरिष्ठ अधिकारी भक्त के शरण में रहिए आप। और कमल लोचन प्रभु से भी उन्होंने क्षमा सा कहा, प्रभु जी मुझे अनुमति दीजिए। ये विधान है, ये नहीं कि भक्त लोग यहां से वहां, वहां से यहां ऐसे जंप करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और उनको कृष्ण मिल जाएगा किसी फेमस वरिष्ठ अधिकारी का हाथ पकड़ लेने से उसका भक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भक्त लो प्रोफाइल हो सकता है, पर हो सकता है कि उसके हृदय में बहुत सारा कृष्ण प्रेम है, तो हो सकता है वो आपको कृष्ण प्रेम शीघ्र दे सकता है। कोई बहुत फेमस वरिष्ठ अधिकारी, उसके पास भी बहुत सारा कृष्ण प्रेम है, पर उसके पास बहुत सारे भक्त लोग हैं, तो हो सकता है आपकी बारी देर से आए, यह भी हो सकता है। तो यहां पर कुछ सुंदर उदाहरण दिए हैं कि किस प्रकार से भक्त की भक्त के द्वारा ही हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है भगवत गीता के सप्तम अध्याय का तीसरा श्लोक, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेदि तत्वतः, कि कई लोग तो भगवान को जानते ही नहीं है, पर जो लोग भगवान को जानने में उत्सुक हैं या भगवान को जानने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, यहां तक कि कुछ सिद्धियां भी उनको प्राप्त हो चुकी हैं, भौतिक सिद्धियां, पर फिर भी वो भगवान को नहीं समझ सके हैं। ऐसे जो सिद्ध पुरुष हैं, ऐसे बढ़े चढ़े हां एडवांस डिवोटी, शब्द प्रयोग किया जा रहा है एडवांस डिवोटी, हां बहुत सारे एडवांस डिवोटी हो सकते हैं, एक्सोल्टेड सोल, उन्नत भक्त अधिकारी, परंतु देखिए भगवान को जानना और भगवान की शरण में बने रहना, हम लोग कोई दो साल, पांच साल, बीस साल, पच्चीस साल, तीस साल, पचास साल से हैं, पर जब जप करते हैं ना हरिकृष्ण महामंत्र का, तो जप करते समय अपने हृदय से पूछना चाहिए, क्या यही हरिकृष्ण महामंत्र मुझे भगवत धाम ले जाएगा, क्या यही हरिकृष्ण महामंत्र मुझे भगवत दर्शन करेगा, क्या कृष्ण ही भगवान है? क्योंकि पचास साल हो गया, तीस साल हो गया जप करते करते, अभी तक कुछ गुदगुदी नहीं हुआ, इधर कुछ प्रकाश बकाश दर्शन नहीं हुआ, हुआ है किसी को? हुआ है तो बोलिए मैं चरण पकड़ना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे भक्त का चरण पकड़ने से कल मेरे हृदय में प्रकाश हो जाएगा, कुछ गुदगुदी होगा, कुछ अनुभूति होगा, ये तो जड़ का जड़ है अभी भी, खाली रपटा मार रहा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नैनम गलत अश्रुधार्य हो ही नहीं रहा है, कोई है तो प्लीज बताइए, या छुपे रुस्तम हो एकांत में भी प्लीज बता देना, अगर कोई है तो चरण पकड़ लूंगा मैं, सच बता रहा हूं। तो ऐसे सिद्ध में भी जो भगवान को जानने वाले कोई एक वीरला होता है, और ऐसे वीरले में से हजारों में से कोई एक भगवान को प्राप्त हो सकता है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त का भक्त बनता है, उसी के ऊपर कृष्ण अनुग्रह करते हैं, अनुकंपा करते हैं, और किसी के ऊपर कृष्ण अनुकंपा नहीं करते हैं। आज से करीब 800 वर्ष ऐसे कुछ पहले दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ जी के मंदिर में एक बहुत शुद्ध भक्त हुए थे, राजा कुलशेखर। राजा कुलशेखर कृष्ण के महान भक्त थे, मलयालम केरला देश के, और वो राजा कुलशेखर बालकृष्ण का दर्शन उन्होंने एक बार रात्रि में किया, स्वप्न में दो क्षण के लिए। तो कोई कहेगा वो झूठ बोलते होंगे, ना ना, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट देखिए परिणाम। दूसरे दिन सवेरे उठते ही कृष्ण दर्शन का यह फल हुआ कि उनके हृदय में संपूर्ण ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो गया, उन्होंने सारा राज्य, रानी, महल, संपत्ति, लश्कर सब त्याग दिया और संन्यास मार्ग पर चले गए। ऐसे राजा कुलशेखर ने अपने मुकुंद माला स्त्रोत्र नाम के एक स्त्रोत्रावली बनाई है 53 श्लोकों की, बहुत सुंदर श्लोक है। प्रभुपाद जी कई बार मुकुंद माला स्त्रोत्र के श्लोकों को गाते थे या कई जगह ग्रंथों में उन्होंने लिखा है। तो उसमें से एक, उन श्लोकों में से जो 25वां पुष्प है या 25वां श्लोक है, उनमें राजा कुलशेखर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, मत जन्मनम फलमिदम मधुकैट भारे मत प्रार्थनीयम मत अनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे समस्त लोकों के नाथ, हे समस्त लोकों के स्वामी, यदि आप मेरे जन्मों जन्म की सेवा से, भक्ति से, धर्म पालन से यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, मुझे अनुग्रहित करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं तो मत जन्मनम फलमिदम मधुकैटभ भारे, हे मधुकैटभ के हंता, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे कोई फल देना चाहते हैं, मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हैं, तो मेरी आपके चरणों में एक प्रार्थना है। यदि आप फल देना चाहते हैं तो मुझे क्या फल चाहिए, वो फल मैं मांग रहा हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। मत प्रार्थनीयम मत अनुग्रह एष एव, यदि आप अनुग्रह करना चाहते हैं, यदि आप अनुकंपा करना चाहते हैं, तो मेरी प्रार्थना है, क्या प्रार्थना है, मुझे ऐसा फल दीजिए। कैसा फल? तो कह रहे हैं त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। मुझे आपके दासों का दासों का दासों का दासों का दासों का दासों का दास बना दीजिए। त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक, भृत्य माने दास सेवक, परिचारक माने सेवक दास, परिचक परिचारक परिचारिका अर्थात नर्स जो हॉस्पिटल में होती है। त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे प्रभु, मुझे यदि आप अनुग्रहित करना चाहते हैं, यदि मुझे आप कोई वरदान देना चाहते हैं, मुझे आपके दासों का दासों का दास बना लीजिए। मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, आपका दर्शन, आपकी कृपा, आपके मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपका दास बना दीजिए। आदि पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यो मे भक्त जना पार्थ न भक्तांश चमते जना मद भक्ता नाम च ये भक्तास्ते भक्तो तमाम मता। हे पार्थ, यदि कोई मेरा सीधे मेरी शरण में आने का प्रयास करता है, मेरा भक्त बनता है, मेरे भक्त बनने का प्रयास करता है, मैं उसे कभी भी अपना भक्त नहीं मानता हूं। यो मैं भक्त जना पार्थ न भक्तां शमते जना, तो किसको आप भक्त मानते? मद भक्ता नाम च ये भक्तास्ते, जो मेरे भक्त का भक्त बनता है। मद भक्ता नाम च ये भक्तास्ते मैं भक्त तमामता, उसे ही मैं अपना भक्त मानता हूं जो मेरे शुद्ध भक्त का भक्त बन जाता है, अन्यथा मैं किसी को अपना भक्त नहीं मानता कि जो सीधा मेरी शरण में आ जाए। यदि राम जी की प्राप्ति चाहिए तो किसकी शरण में जाना होगा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सितिहु लोक उजागर, राम दूत यतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। है कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो बजरंग बली की शरण में जाना होगा। और तुलसीदास जी के जीवन में ऐसी घटना भी हुई, सारा जीवन राम का भजन किया। तुलसीदास जी ने सारा जीवन राम का भजन किया और सूरदास जी के निमंत्रण से एक बार वृंदावन में आए और उनको जब कहा कि कृष्ण के दर्शन करो, बांके बिहारी के दर्शन करो, श्याम सुंदर के दर्शन करो, तो कहे नहीं, जब ये धनुष हाथ में लेंगे तो ही दर्शन करूंगा मैं। और वृंदावन में जब श्याम सुंदर ने, गोपीजन वल्लभ ने धनुष हाथ में धारण किया और राधा रानी ऐसे बन गई सीता, तब तो उन्होंने दर्शन किया। ऐसे पक्के राम के भक्त को भी जब जीवन के अंत में जब बहुत ही विवल हो गए, व्याकुल हो गए कि राम की प्राप्ति कब होगी, राम के साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन कब होंगे, उनको दर्शन नहीं हो रहे थे, उन्होंने बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की हनुमान जी से कि प्रभु कृपा कीजिए, तो कहें ठीक है मैं प्रभु से ठाकुर जी से निवेदन करता हूं। उन्होंने श्री राम से निवेदन किया, प्रभु ने कहा ठीक है कल मैं उन्हें दर्शन दूंगा, आप कहिए कि कल वो मुझे पहचाने। तो हनुमान जी ने कहा तुलसीदास जी से कि महाराज कल आएंगे, प्रभु श्री राम आपको दर्शन देने आएंगे, आप दर्शन कर लीजिए। तो आज तो संत शिरोमणि तुलसीदास गोसाई जी ठीक से एकदम सुंदर तिलक किए हैं, सुंदर एकदम अच्छे वस्त्र स्नान करके और बहुत अच्छी तरह से श्री राम नाम की धुन चलाई है और चंदन घीस रहे हैं और सबको तिलक दे रहे हैं और प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा हो रही है। और भोर हुई, प्रभात हुई, सूर्योदय हुआ, थोड़ा समय बीत गया, मध्यान हुआ, सायंकाल आया, संध्या आई, रात्रि आई, प्रभु तो नहीं आए। तो रो रो कर हनुमान जी को पुकारने लगे, कहें भगवान कहां है मेरे राम? तो कहे आए तो थे सूर्योदय के समय में एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेकर। हां बोले आपने नहीं पहचाना तो मैं क्या करूं? अरे प्रभु गलती हो गई, भूल हो गई, क्षमा चाहता हूं, प्लीज कृपा करके मुझे फिर दर्शन का अवसर प्रदान कीजिए। बोले ऐसे कैसे, ये नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा एक बार अब गलती नहीं करूंगा, अब प्रभु को पहचान लूंगा मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दूसरी बार ठाकुर जी से निवेदन किया, दूसरी बार अनुमति मिली, आज तो एकदम चौकन्ना हो गए। बोले आज खाना पीना कुछ नहीं, निर्जला करेंगे आज। हो सकता है कि कुछ खाने में, कुछ पीने में, कुछ थकान विश्राम करने में कहीं निकल गए होंगे, प्रभु मैंने पहचाना नहीं। तो दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, भोर हुई, प्रभात हुई, सूर्योदय हुआ, दिन हुआ, हाँ, मध्याह्न हुआ, सायंकाल हुआ, संध्या हुई, रात्रि आ पहुंची, फिर रोने लगे। बोले आए तो थे प्रभु जी भिखारी के रूप में। बोले भगवान ऐसी लीला करेंगे, भेष बदल के आएंगे तो मैं क्या करूं। तो बोले आप पुकारिए, आपको तो अभ्यास है केवल धनुर्धारी के रूप में देखने के लिए, ऐसे थोड़ी ना आएंगे, आपको आपके प्रभु को पहचानना होगा। तो कहें भगवान आप कृपा कीजिए। अब बोले अब नहीं हो सकता, दो चांस तो गया, दो अवसर आपको दिए, अब क्या हो सकता है, अब नहीं। बोले प्रभु तो फिर मेरे पास आत्मघात, आत्महत्या करने के अलावा क्या उपाय बचता है, कोई और चारा है? मेरा संपूर्ण जीवन राम भजन में चला गया, नहीं हुआ ना राम से भेंट। तो हनुमान जी ने सोचा एक शुद्ध भक्त यदि आत्महत्या कर ले यह उचित नहीं होगा, संसार में गलत उदाहरण हो जाएगा। उन्होंने फिर से ठाकुर जी से, प्रभु श्री राम से निवेदन किया। प्रभु ने कहा अंतिम बार। तो उन्होंने दूसरे दिन, तीसरे दिन, अब एकदम सावधान, और भोर हुई, सवेरा हुआ, और प्रभु श्री राम सुंदर राजकुमार का रूप लेकर आए हैं, और ये अपनी राम धुन में मस्त हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह। ये तो गांधी जी का बनाया हुआ है, ईश्वर अल्लाह, ये गांधी जी का है, ओरिजिनल भजन ऐसा नहीं है, ये अल्लाह बोलने से भी कोई आपत्ति नहीं है। तो वो अपना भजन में मस्त है, और ये प्रभु श्री राम ऐसे नतमस्तक हुए, प्रणाम किए, और उनको चंदन का तिलक करने जा रहे हैं, और ये तिलक होगा और राम निकल जाएंगे, फिर खत्म। तो उसी समय तत्क्षण हनुमान जी पेड़ पर तोता बनकर के बोलने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चंदन घिसे तुलसीदास, चंदन घिसे तिलक देख रघुबीर, प्रभु श्री राम। पैर पकड़ लिया, गिड़गिड़ाने लगे, नयनम गदगद अश्रुधारिया, वदनम गदगद रुधि। प्रभु बहुत देर की, प्रभु बहुत देर की, प्रभु कितना विह्वल हुआ, कितना संताप हुआ, प्रभु आज हृदय को सांत्वना हुई, प्रभु जैसे मरुभूमि पर वर्षा का जल पड़ जाए, तो कैसे ऐसे ऐसे मेरे हृदय मरुभूमि रूपी था, संतप्त था, दग्ध था, प्रभु आपके दर्शन रूपी जो मेघ वर्षा हुई, प्रभु आज परितृप्त हुआ। तुलसीदास जी ने पैर पकड़ लिए, यदि उस समय हनुमान जी नहीं बोलते तो क्या होता, पहचान लेते? कभी भी संभव नहीं, कभी संभव नहीं। भगवान के भक्तों की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता। स्वयं कृष्ण कहते गीता में, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं तो योग माया से आवृत रहता हूं, मुझे कोई थोड़ी सब जान सकता। भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये, सेवोन्न मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदा। ये कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, व्यास, परिकर आदि हम अपनी भौतिक त्रुटिपूर्ण अपूर्ण ऐसी इंद्रियों से कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण के लीला, कृष्ण का धाम, कृष्ण के परिकर किसी को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं तथा त्रुटिपूर्ण हैं। क्या उदाहरण है उसका, देखिए, अगर हमें 200 लीटर का ड्रम, अगर पानी भर के 200 लीटर का ड्रम बहुत तुरंत ही जल्दी अगर मीठा करना है, उसको मीठा स्वीट बनाना है, तो हम कितना किलो शक्कर डालेंगे? 200 लीटर में कम से कम 50-60 किलो शक्कर डालेंगे तब जाके, पर उसको घोलने में कितना समय और परिश्रम होगा। पर बजाय हम सेक्रीन का 2 टेबलेट डाल देंगे, 2 गोली सेक्रीन की डाल देंगे, तो 200 लीटर ड्रम पानी जो है तत्क्षण मीठा बन जाएगा, केवल 2 टेबलेट। यदि वो 2 टेबलेट में से 1 टेबलेट का एक छोटा सा टुकड़ा यदि हम अपनी जीवा पे रखेंगे सेक्रीन का, तो हम थू 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 कर देंगे, एकदम कड़वा लगेगा, वो मीठा नहीं लगेगा। कभी प्रयोग करके देखना, क्योंकि हमारी जिह्वा में वो ग्रहण शक्ति नहीं है उतना मीठा ग्रहण करने की, इसलिए हमें वो कड़वा लगता है। तो उसी प्रकार कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, व्यास, परिकर आदि सब दिव्य हैं। अर्जुन भी कहता है ना भगवद गीता में, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। भगवान आपका सब परम है, धाम परम है, नाम परम है, रूप परम है, दिव्य है, आप आदि पुरुष हैं, अजन्मा है, परंतु यह सब हम कैसे ग्रहण करें, कैसे समझें। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्यम इंद्रिये, तो उसका उपाय क्या है, सेवोन्न मुखे ही जिह्वा दो। हमें सेवा के द्वारा, किसकी सेवा, वैष्णवों की सेवा, कृष्ण भक्तों की सेवा, गायों की सेवा, भगवान की सेवा, धाम की सेवा, धाम वासियों की सेवा, सेवा 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 सेवा। जब हम सेवा में परिपूर्ण लिप्त हो जाएंगे तब कृष्ण कहते हैं सेवोन्न मुखे ही जिह्वा दो। जब आप सेवा में परिपूर्ण लिप्त हो जाएंगे, निमग्न हो जाएंगे, तब इस जिह्वा पर कृष्ण का नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आदि स्वयं एव स्फुरत यदा, अपने आप स्फुरित हो जाएगा। भगवान के जितने भी महान भक्तों हैं, संत तुकाराम, प्रहलाद महाराज, नरसी मेहता, मीराबाई, सब कोई थोड़ी ना कहीं गए थे ये सब हमारी तरह रोज भागवतम क्लास अटेंड करने के लिए, हाँ? शाम को भगवत गीता, कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्था, कोई संप्रदाय थोड़ी ना गए थे वो लोग। उन्होंने कई जन्मों में इतनी सेवा की, स्वयं नारद जी ने भी अपने पूर्व जन्म में साधु संत वैष्णव की सेवा की, उनका उचिष्ट खाया। तो एक वैष्णव के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, कोई बताएगा? वैष्णव, हम सब जो वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, कम से कम मैं तो प्रयास कर रहा हूं, वैष्णव हूं नहीं, प्रयास कर रहा हूं। यदि आप सब जो वैष्णव हैं या हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे क्यों कर रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों हम वैष्णव बन रहे हैं, भक्ति में मन लग जाए, बहुत अच्छा और सच्चा भी जवाब है। और हम सब वैष्णव क्यों बन रहे हैं, क्या हमारा लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का, ले बोलिए प्रभु। हाँ जी, कृष्ण प्राप्ति, बहुत सुंदर और एकदम सच्चा जवाब। लेकिन ये हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा का सर्वोच्च जवाब नहीं है। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण दर्शन, भगवत प्राप्ति, भगवत धाम, ये सर्वोच्च जवाब है। लेकिन कभी कभी बच्चे लोगों को स्कूल में ए ग्रेड मिलता है ना, ए ग्रेड, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा होता है तो ए प्लस मिलता है। तो ए प्लस क्या है, सेवा। हम लोग गाते हैं कि नहीं, कई बार, तंदेरा चरण सेवी भक्त सनिवास, जनमे जनमे होए एही अभिलाष, इच्छाई गोसाई आर मुई तार दास, तास बार पद रेणु मोर पंचग्रास, तंदेरा चरण सेवी भक्त सनिवास, जनमे जनमे होए एही अभिलाष। जो सच्चा वैष्णव है उसके जीवन में ए प्लस क्या है, कृष्ण दर्शन नहीं। सच्चा जो वैष्णव है उसके जीवन में कृष्ण दर्शन सर्वोच्च उपलब्धि नहीं है, उसके जीवन में सच्ची सर्वोच्च उपलब्धि है वैष्णव सेवा साधु संगति। तासबार पद रेणु मोर पंचग्रास, वैष्णव चरण धूली, वैष्णव चरणामृत, वैष्णव उच्चिष्ट, वैष्णव से शिक्षा उपदेश, ये पंचग्रास है हमारे जीवन जीने का जो पांच निवाला है। तासबारा पदरेणु मोर पंचग्रास, ये पंचग्रास क्या है, वैष्णवों की संगति, वैष्णवों के उपदेश, वैष्णवों की सेवा, वैष्णव चरण धूली, वैष्णव चरणामृत। और इसीलिए हम जब गौरमंडल परिक्रमा या ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं तो ब्रजमंडल में नहीं पर विशेष करके गौरमंडल परिक्रमा में ये ठाकुर वो ठाकुर वो ठाकुर फलाने ठाकुर इसकी यहां जगह है, या यहां बैठते हैं, ये यहां स्नान करते थे, तो हम लोग दौड़ते हैं वो सब ठाकुरों की जगह देखने के लिए। गौरमंडल में यही है सब, है ना, गौर लीला स्थान कम है पर ठाकुरों की जगह ज्यादा है। और ब्रजमंडल में जाएंगे तो कृष्ण लीला स्थान अधिक है। तो यहां तक कि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैष्णवों के जहां लीला स्थान है उसके दर्शन करने चाहिए, वहां की धूली लगानी चाहिए। भागवतम के सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं हिरण्यकशिपु से कि जब तक कि कोई एक व्यक्ति शुद्ध वैष्णव भक्त की चरण धूलि से स्नान नहीं कर लेता है तब तक उसे कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि कृष्ण सामने आ भी जाएंगे तो हम पहचानेंगे नहीं, तुलसीदास जी की तरह। यदि मुरली मनोहर या धनुषधारी रूप में आ जाएंगे तो ध्रुव जैसा होगा, हमको पता ही नहीं है कि कृष्ण का क्या करना चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने शिक्षा दी, गोपीर भरत पद कमलयो दासानु दासानु दास, कि कृष्ण की विशेष विशेष अति विशेष अति विशेष सेवाओं में उनके शुद्ध भक्त रहते हैं श्रीमती राधा रानी बलराम जी, और फिर उनकी सेवा में रहते हैं ये गोपियां। कैसे? ओ, मधुराष्टकम है ना,
करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम।
जानते हैं ये वमितम मधुरम क्या है? वमितम मधुरम क्या है? नंद भवन में राजभोग के बाद वृषभान दुलारी आई है नंद भवन में, वृषभान दुलारी किशोरी जी स्वामिनी जी, वो आई है कुछ अष्ट सखियों के साथ, और हरेक सखियों के अपने अपने 120 मंजरियां हैं, और हर मंजरियां 120 पान बनाती हैं, और राजभोग होने के बाद नंद भवन में नंदलाल को ये मंजरियों के द्वारा तैयार किए पूरे पानों से भरा हुआ विभिन्न प्रकार के मसाले और विभिन्न प्रकार के कद आकार सुगंध तथा स्वाद वाले पान से भरा हुआ थाल नंदलाल को अर्पित किया जाता है, और वो ऐसे एक दो बार चबाए, थूक दिए, पिचकारी मार दी, और वो गोपियां हाथ में लेकर उसका अधरामृत का पान करते हैं। इसलिए कहा वमितम मधुरम, जो वमन किया है वो भी मधुर है उनका। वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। बहुत सुंदर ये मधुराष्टकम, आचार्य चरण श्रीपाद वल्लभाचार्य जी का रचयित मधुराष्टकम। कभी अवसर पड़े तो सुनिए, पढ़िए, पाठ करिए, समझिए, बहुत आनंद आएगा। तो ऐसे परंपरा चलती है। गौर महाप्रभु के सचिव हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनके शिष्य हैं सनातन गोस्वामी, उनके परंपरा में आते नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हाँ, शिला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, शिला प्रभुपाद और वर्तमान आचार्य वृंद। तो कई बार जब 15, 20, 25 साल हो जाते हैं ना भक्त लोगों को, तो ऐसे अधिकांश कई बार भक्त लोग कहते हैं हमारे इस्कॉन के वर्तमान आचार्य वृंद में कोई खास भजन प्रणाली नहीं है, भजन रुचि नहीं है। होका तू सीखियो क्या थी आचार्य वर्तमान आचार्य? चलिए ठीक है, आपके आचार्य को आपके गुरु को सुंदर कथा नहीं आती या गूढ़ रहस्य के उत्तर नहीं आते हैं, पर वो गुरु ने कृष्ण से आई हुई वो जो भगवत शक्ति है वो दीक्षा के द्वारा आपके अंदर में स्थानांतरित की है, ट्रांसफॉर्म किया है, आपके ट्रांसमिशन को उजागर किया है, तब जाकर के आपका ट्रांसमिशन जो है नेटवर्क पकड़ता है बीप 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 बीप, नहीं तो अभी तक बैटरी डाउन था, सब बोगस था। तो वो एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? अगर हमारे कोई गुरु को अच्छी कथा नहीं आती, अच्छे श्लोक नहीं आते हैं, या गूढ़ रहस्य कथा में के उत्तर नहीं दे पाते हैं, हम दूसरे गुरु के पास दौड़ जाएं, बकवास ही है। हमारे गुरुदेव ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, एक संसार में भूला भटका हुआ जीव उसको पकड़ के कृष्ण के सन्मुख लाकर उस परंपरा में कृष्ण शक्ति के प्रवाह में आपको भिगो दिया है, आपको वो कृष्ण शक्ति प्रदान की है, क्योंकि उनके पास उनकी परंपरा की शुद्ध कृष्ण भक्ति की शक्ति या भक्ति का स्रोत उनके पास है। शायद उनकी वाणी में वो जादू ना हो, वो आकर्षण ना हो, वो शक्ति ना हो, ठीक है, वो तो तुम्हारे कान फूटे हुए हैं, कोड़िया है कि तुम्हें उनमें से उपदेश लेना नहीं आता है। कोई जरूरी नहीं है कि हरेक की वाणी में आकर्षण हो, मधुर कंठ हो, अच्छा गा सके, ऐसा कोई आवश्यक नहीं, आपके पास में दृष्टि है, आपका हृदय शुद्ध है, तो उनमें से ही मिलेगा। हमारे इस मंदिर के पूर्वाध्यक्ष जो थे 20-22 मिनट में खत्म हो जाता था उनका प्रवचन, लेकिन मैं सच कहता हूं ठाकुर जी और भक्तों की साक्षी में, मुझे हमेशा उनके प्रवचन में से, हर एक प्रवचन में से कोई एक नई बात सीखने मिलती थी। भले हम लोग कुछ भी हंसते थे यार, लेकिन मुझे हमेशा वो कहीं से ढूंढ के निकालते थे, 3-4 किताब लेके बैठते थे और कुछ एक नई बात जरूर बोलेंगे जो भक्ति के काम की। 20-22 मिनट टिकना बहुत हो गया उनके लिए यहां बैठ गया, लेकिन ठीक है। मुझे गुराकेश प्रभु कहते थे कि सामने बैल क्यों ना बैठा हो व्यास आसन पे, पर हमें धीरज धर के, हमें अच्छी तरह से बैठ के श्रवण करने का, हमें एक अच्छा श्रवणकर्ता बनना चाहिए। हम बैठे सामने बैल रंभा रहा है, अम्बा, भले बैल ही क्यों ना हो। लेकिन तो इस प्रकार से हमें भक्तों की संगति का उपदेश यहां पर यही कह रहे हैं कि देवर्षि नारद के श्राप से हमारा कल्याण हुआ, प्रभु आपके दर्शन हुए, यदि नारद जी नहीं होते तो हमारा क्या होता। मीराबाई भी कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, क्या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलख दीने रे सतगुरु कृपा कर अपनायो। अब मीराबाई के गुरु को कौन जानता है, कौन है मीराबाई के गुरु जी, हाँ कौन, रोहिदास, रोहिदास वो चमार मोची, हाँ देखा, माता जी को पता है, सब विद्वान प्रभु जी को पता नहीं है, भारी भारी ग्रंथ पढ़ते हैं ना, छोटी छोटी कहानियां कौन पढ़ेगा है, नहीं जीव गोस्वामी उनके शिक्षा गुरु हैं, जीव गोस्वामी उनके दीक्षा गुरु नहीं है, हाँ रैदास, रोहिदास, रैदास, जो भी कंफर्म कीजिए। वस्तु अमोलख दीने रे सतगुरु कृपा करे अपनाओ, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पता भी है कि जब तक हमारे गुरु जी का सिक्का और साइन नहीं लगेगा तो सत की नाव भव सागर पार करने के लिए हमें एंट्री नहीं मिलेगी उस नाव में। और वो नाव क्या है, यही कुलशेखर राजा कहते हैं मुकुंदमाला स्तोत्रों में कि नारायण के चरणार विंद जो है वो ये भवसागर पार करने की नाव है। तो नारायण के चरणार विंद की, उस चरणार विंद की नाव रूपी में बैठने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे वीजा पासपोर्ट टिकट पे गुरुदेव का सही सिक्का चाहिए। आश्रय हम किसी का भी ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा गुरु हजारों हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु एक, और एक दीक्षा गुरु हो गया, मरते दम तक अंतिम सांस तक पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। जिस दिन गुरु महाराज में श्रद्धा डगमगाई, समझ लेना चाहिए कि हमारी भक्ति में कुछ गड़बड़ है। उस गुरु का कितना उपकार है कि आपको परंपरा में, भक्ति प्रवाह में आपको सम्मिलित कर दिया। आप, मैं कई बार देखता हूं, बहुत दुख होता है जब 20-25 साल, 15-20 साल हो जाता है ना, तो भक्त कहते हैं ठीक है ये चलता है, इस्कॉन में वो चलता है, पॉलिटिक्स हैं गुरुजी, सब इस्कॉन में, यहां तक सुना है संत कौन है, ठीक है ना, संत स्वभाव के गुरुदेव नहीं है इस्कॉन में, ठीक है संत नहीं है कि जिनको देख के एकदम मन शांत हो जाए, हृदय को ठंडक मिले, आंखों को एकदम फीस्ट मिल जाए, हा हा आज किसी कृपामयी कृपा निधान के दर्शन हो गए, पवित्र हो गए, ऐसे संत नहीं है भाई हमारे इस्कॉन में। मैनेजर हैं, कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, मंदिर बनाओ, पैसा लाओ, लाइफ मेंबरशिप करो, ठीक है नहीं है ना हमारे संत। लेकिन जो भी हैं, हमारे पास दृष्टि नहीं है उन संतों को देखने की, क्योंकि जितने भी मंदिर बनाने वाले, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कराने वाले, भागवत कथा कराने वाले, सभी संतों से हमने निकट से संगति की है और उनके हृदय से कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का हमने प्रयास किया और उन्होंने कृपा करके दिया भी है। अब आप यदि न कर सके तो हम ये स्टेटमेंट नहीं बना सकते हैं कि संत नहीं है। आप संत बनिए, आप गुरु बनिए, और हजारों जीव के पाप की जिम्मेदारी लेकर, दीक्षा देकर भगवत धाम भेजने की गारंटी लीजिए। है हिम्मत, कभी गंभीरता से विचार कीजिए कि चलो मैं इसको दीक्षा दे देता हूं। महाप्रभु ने तो कहा है जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आगे गुरु हो या तारे ही देश, तो बनो गुरु पता चलेगा। तो इसलिए यहां पर ये कई कई हजारों ऐसे उदाहरण हैं कि बिना भक्त की कृपा, तो वैष्णव के सर्वोच्च जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है विशेष करके गौड़ीय वैष्णव का, वैष्णव संगति वैष्णव सेवा, ये ए प्लस है। क्योंकि एकाकी आमार नाही पाय बल, हरि नाम संकीर्तने, कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पार, तुमार शोकति याचे, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा। भक्त कहेगा तो फट से भगवान आएंगे, है ना, फट से भगवान मिलेंगे। भगवान के साथ में रोज सिर फोड़ो, नारियल फोड़ो, पेड़ा चढ़ाओ, हार चढ़ाओ, तेल चढ़ाओ, क्या क्या व्रत करो, भगवान आएंगे भी नहीं भी आएंगे। लेकिन यदि भक्त कहेंगे कि प्रभु इनको दर्शन दीजिए, तो देना पड़ता है भगवान को, भगवान को सुनना पड़ता है। मुझे एक शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं पता नहीं है, एक बहुत ही अधिकृत स्रोत से ये पता चला कि वैकुंठ में श्रील प्रभुपाद जी को जब कृष्ण ने कहा कि आप जाइए और धरती पर और प्रचार कीजिए, तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं आप जाइए प्रचार कीजिए, मैं आपको प्रचार की क्षमता और शक्ति दूंगा और सफलता यश। बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले आपके भक्तों को दुख बहुत पड़ता है, बहुत दुख सहना पड़ता है, आपकी जो भक्ति करता है प्रचार करता है आपका विरह हो जाता है, आप चले जाते हो, पता नहीं कितने दुख बिचारे हो। पांडवों को देखो राजघराने के, हाँ शाही परिवार से राजघराने से वन वन भटके, रामचंद्र जी स्वयं वन वन भटके, मीराबाई वो भी महारानी थी, बोले गलियों में घुंघरू बांध के नाची, सबको बहुत बहुत गरीबी और बहुत तकलीफ, मुझे नहीं जाना। तो बोले नहीं नहीं आपको जाओ, मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जहां भी जाओगे, आप जहां भी प्रचार करोगे, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, सब जगह भव्य महल तैयार हो जाएंगे। और आप देखिए इस्कॉन के कौन सा मंदिर ऐसा है जो महल से कम है, आप बताइए एक भी मंदिर। तो इसलिए भगवान के भक्तों में वो शक्ति होती है कि वो कृष्ण को किसी भी रूप में आपको दे सकते हैं, आप में चाहे योग्यता हो चाहे न हो। यदि भक्त कहे भगवान इसको दर्शन दीजिए, तो दे देते हैं। उन्होंने हरे कृष्ण, कोई त्रुटि या गलती हो तो क्षमा कर दीजिए। कोई प्रश्न या जिज्ञासा? ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।